जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था वाली बात है। आज रविवार होते हुए भी कुछ परिवर्तन, आप लोग अपने मनोयोग को ठीक ठाक कर लीजिए। बहुत दूर दूर से आप आए हैं, यूं तो संसारी प्राणी बहुत दूर से आया है, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। भारतीय संस्कृति के अनुसार जिनसे हमें जीवन मिलता है, दिशाबोध मिलता है, उनके विषय में हमें कुछ कहना नहीं होता, कुछ करना होता है। जहां पर कहने की बात आती है तो कहा नहीं जा सकता वो, क्योंकि जिसका मूल, जिसका परिमाण, जिसकी परिधि, वह अमाप है, वह निरवधि है, सीमातीत है, और उसका महत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जिनका वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है, उनको हम वचनों के माध्यम से बांध नहीं सकते, उनके हम गुणानुवाद कर नहीं सकते। गुणानुवाद के लिए भी ज्ञान की, प्रतिभा की और बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, यह निश्चित है। फिर भी माम बाल माला पैतीद मिथम, ये पद्म प्रभु भगवान की स्तुति के अंतिम एक चरण है। ये आलापेति इत्थम माम बालकम, मुझे यह बालक के समान जो मैं हूं, इसके लिए भगवान की भक्ति ही मुझे प्रेरित करती है, इसमें मेरी कोई प्रतिभा का प्रयोग नहीं है। जैसे एक छात्र ने कहा कि ख्याल नहीं आया इसलिए अभी तक आत्मा खाल में है, पहले सुनने में मुझे नहीं आया, फिर बाद में घूम करके इधर जब हवा आई तो मुझे भी ख्याल आ गया कि मैं भी खाल में हूं। कितनी अच्छी बात है ये, मैं ही नहीं बोलने वाला भी। और ये ध्यान रखे, ये ख्याल रहे, भगवान भी उससे नहीं बचा है जो अरहंत परवेष्टि माना जाता है, वो भी अभी खाल में है। ये बात अलग है, वो खाल भले ही परम औदारिक के रूप में है, पॉलिश्ड और मालिश्ड हो गया है, लेकिन है तो अभी खाल ही। ये ख्याल रहे कि अरहत परमिष्ट भी जब खाल में है तो हम लोगों की क्या हाल है देखना चाहिए। अभी वृद्ध होते हुए भी हमारा कर्तव्य क्या है, फिर भी मैं कैसा हूं देखना चाहता है, किंतु इस दर्पण में देखो जहां पर बाहुबली भगवान खड़े हैं, उसमें ख्याल आ जाएगा कि मैं अभी भी खाल में हूं। ये खाल का संबंध पृथक कृते चरण मणि रोम कूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य, यह तीन बार द्वात्रिंशत का जो सामाय करने वाले हैं प्राय करके पढ़ते हैं, मैं भी इसका वाचन करता हूं बार बार। इस कारिका के बार आने के उपरांत मैं इसको दोहराने की चेष्टा करता हूं, और साथ जो पढ़ने वाले होते हैं तो आगे के श्लोक पढ़ते हैं तो मैं ये सोचता हूं इन लोगों को अभी ख्याल नहीं है कि हम खा लेंगे। पृथक कृते चर्मनिरोम कोपा को तो तिष्ठन्त शरीर मध्य कहा जा रहा है। जब रोम कोपों को हम पृथक कर देंगे तो वह पृथक नहीं माना जाता है। जब हम चर्म को ही पृथक कर देंगे तो वहां पर बाल नहीं रह पाएंगे, रोम रह नहीं पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो फिर भी वो रोम चर्म में रहते हैं, कुछ उखड़ जाते हैं और कुछ चमड़ी सहित जो उखड़ जाते हैं उनकी ओर भी दृष्टि रखना चाहिए, ये भी ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि बाल की खाल मत निकालो ऐसा भी कहा गया। बाल की खाल मत निकालो इसका अर्थ यह है कि खाल में बाल है क्या बाल में खाल है, यही हमें ख्याल करना है अभी, क्योंकि यह उक्ति इसलिए आई है कि जब हम बारीकी के साथ संशोधित करते हैं, छानबीन करते हैं, तो बहुत कुछ उसमें मसाला और मिलता है जो पराया है। अर्थात परमेष्ठि अभी खाल में है, यह एक वही है कि जो बाल की खाल की युक्ति को चरितार्थ कर देती है। इसलिए घोषणा जैनाचार्यों ने की है कि जो अर्हत परमेष्ठि है वह परमेष्ठि भले ही हो लेकिन वस्तुतः वह भगवान नहीं है किंतु वह मुनि महाराज हैं। ये ध्यान रखो, आज का छात्र भले ही प्रथम कक्षा में हो लेकिन वो है 13वीं और 14वीं कक्षा के स्नातक भले ही माने जाएंगे, लेकिन है वो भी खाल में। ख्याल आ गया, बहुत कठिन है। हम उन्हें भगवान कहते हैं, नीचे की बात ही अलग है। आमूल चूल परिग्रह में लदे हुए व्यक्ति भगवान से भी ऊपर उठ करके ये ख्याल ही नहीं करते वो, और वह चर्म के अंदर भगवान उनको दिख रहे हैं। श्रद्धा की बात अलग है और महसूस करना अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हम यदि गुणानुवाद करना चाहें तो गुणानुवाद कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रतिभा है ही कहां। हम आस्था के माध्यम से कुछ कह सकते हैं और उस कहने के पीछे भी भगवान की स्तुति नहीं, भगवान टूटे फूटे शब्द हैं, लेकिन उसके पीछे मेरी जो टूटी हुई नैया पार हो जाए जहां पर आप खड़े हैं, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। यह भारतीय संस्कृति है, आदर्श हमेशा हमेशा सामने बना रहे। और वही बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं कि संस्कारी ऐसे जिनसे हमें कुछ मिला है, जिनसे हमें दिशा बोध मिला है, जिनसे हमें जीवन मिला है, जिनसे हमारा धार्मिक संस्कारों का जीवन प्रारंभ हुआ है, उनके बारे में हमारा क्या कहना होता है, नहीं क्या करना होता है, यह हमें देखना आवश्यक है। आज का युग कहने को महत्व देता है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहते कहना नहीं किंतु उनके प्रति क्या करना है ये आवश्यक है। हम अपने आचार्यों के प्रति, हम अपने जो साधुओं के प्रति, हम अपने अतीत में जो परिश्रम करके गए हैं उनके प्रति क्या कर रहे हैं ये देखने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं यह स्पीच की बात होती है, यह सुनने की बात होती है। सुनने एक लकीर में पर्याप्त है, करने के लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा पड़ा। वीतरागता के ऊपर श्रद्धान करना ये एक दो शब्द हो गए, लेकिन वीतरागता क्या है ये पहचान करके उनके भक्ति में लीन होना बहुत कठिन होता। कठिन उस व्यक्ति के लिए हो जाता जिस व्यक्ति ने कुछ सुनने के उपरांत विशेष कार्य किए। क्या किए? अभी एक छात्र ने कहा कि मूर्तियां बहुत सारी बन जाती हैं लेकिन मूर्तियां पूज्य नहीं बन पाती हैं। ये ध्यान रखो, जब तक सूर्य मंत्र नहीं दिया जाता है तब तक वह मूर्ति पूज्य नहीं मानी जाती है। और सूर्य मंत्र का अर्थ ऐसा होता है कि प्रतिष्ठान जिसको बोलना चाहिए, पूरी पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्राणों को प्रतिष्ठित करने के लिए उसके योग्य भावों का वहां पर आरोपण करना अनिवार्य होता है। इसलिए मूर्तियां कई बन जाती हैं और इस कान से हवा निकल जाती है, वो मूर्तियां नहीं मानी जाती हैं, किंतु जो भाव हम डालते हैं भीतर हृदय तक वह पहुंच जाता है, तलस्पर्शी जिसको बोलना चाहिए, तब कहीं जा करके वह श्रद्धान पैदा करने में सक्षम हुआ करता है। प्रतिष्ठा केवल मात्र मूर्तियों की ऊपर ऊपर नहीं, पांच दिन में नहीं हुआ करती, और वह प्रतिष्ठा होती ही चली जाती है, और जैसी जैसी होती चली जाती है उसमें से वीतरागता प्राप्त हो जाती है। रागियों के माध्यम से प्रतिष्ठा यदि होती है तो राग का ही प्रदर्शन करता चला जाएगा, हमेशा हमेशा वीतरागता का आलंबन अनिवार्य है। जिनके माध्यम से हमें दिशा बोध मिला है, जिनके माध्यम से हमारे जीवन की शुरुआत हो गई है, उनके प्रति हमें क्या करना है, उसके बारे में मैं आज रविवार प्रवचन में कुछ कहना चाहता हूं। और आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत आकुलता के साथ आप आए हैं, बैठे भी हैं, क्योंकि आपको कहीं और जाना है। ये तो हमें ख्याल रखना होगा कि हम तो आ ही रहे हैं और जा ही रहे हैं, आना जाना जहां पर रहता है वहां पर कोई आना नहीं होता और न ही जाना होता, इसका नाम भटकना होता है। क्योंकि आना उसी को बोलते हैं जो पुनः जाना ना पड़े। आज जो है बुकिंग होता है आने से पूर्व में जाने का, आकुलता का जमाना है, और उसी में हम भी बैठे हैं। हमारे निमित्त से यदि आकुलता हो जाए तो आज क्षमा के दिन जैसे कह रहे थे, हम पहले से क्षमा मांगते, कहीं आप चले जाएं तो फिर बाद में मैं मांग नहीं सकूंगा। मैं वहां से प्रारंभ कर रहा हूं, कुछ करना है मुझे, और वह एक व्यक्तित्व बहुत भावना के साथ, बहुत भक्ति के साथ, जिनसे हमें जीवन मिला है उसके बारे में अपना कुछ करना चाहता है, और इससे उसको बहुत प्रसन्नता है, मुझे इस जीवन में कुछ करने के लिए मिल रहा है यह सौभाग्य है, मुझे कहने के लिए मिल रहा है यह सौभाग्य नहीं है। कई लोग जो हैं कहने के लिए माइक की मांग करते हैं, हम चाहते हैं भैया मेरे सामने माइक ला करके रख देते तो मैं क्या करूं, कुछ कहना तो पड़ेगा, मैं इसमें कहता नहीं, यह मेरा कर्तव्य कह करके यह करना मैं प्रारंभ करता हूं। मैं बोल नहीं रहा हूं, बोलने का एक कर्तव्य समझ करके मैं कह रहा हूं, लेकिन कह नहीं रहा हूं, हमें क्या करना है ये इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूं। हमें कुछ करना है, क्या करना है, अपनी क्षमता के अनुसार करना, जिनका उपकार हमारे सिर पर है उनके अनुसार हमें कुछ करना है। ये नहीं कि हमारे ऊपर जैसे उन्होंने उपकार किया उसी प्रकार हम दूसरे के ऊपर उपकार के कह करके, नहीं, हमें करके दूसरे को इस ओर आकृष्ट करना, मैं दूसरे के ऊपर उपकार करूं यह अच्छा नहीं है, मैं दूसरे के उपकार को दूर करूं यह भी अच्छा नहीं, कि मैं जैसे चाहता हूं उसी के अनुसार उसके करूं तो मेरे जैसे अनाड़ी उसको भी होना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरे को अनाड़ी देखना नहीं चाहता। इस कर्तव्य के माध्यम से वह यदि नहीं चल रहा तो चलना सीख जाए। बच्चे जब आप लोगों के यहां जन्म लेते हैं आप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा जल्दी जल्दी बोलने लग जाए, ये करने लग जाए, नहीं, ये क्रम नहीं है, मेरा बच्चा चलने लग जाए, मेरा बच्चा चलने लग जाए, कैसी भी चले, वह गिरता हुआ भी चले कि नहीं, चलने लग जाए, ताकि वह कुछ बच जाए, नहीं तो स्थावर बन करके बैठ जाएगा तो वो कौन उसको खिलाएगा।
जैसे पेड़ पौधे हैं उनको कौन खिलाए, वो स्वयं ही वो भी चलते हैं। कैसे चलते हैं? उनकी जड़ें चलती हैं नीचे की ओर, तभी वो पनप पाते हैं, तभी वो आसमान को छूने लग जाते हैं और राशन के माध्यम से जीवन को व्यतीत करना। ये निश्चित है कि वह चलाना चाहता है, चलना चाहता है, तो माता पिताओं को बहुत खुशी की बात होती है। तो वह चलने लगा और यह सोचता है कि अब चल करके कुछ मैं उपकार तो नहीं किंतु ऋण को थोड़ा सा कम कर सकूं। और वह ऋण करने कम करने का तरीका एकमात्र यह है कि चल करके ही किया जा सकता है। और माता पिताओं को वह अपने कंधों के ऊपर ले जाना प्रारंभ करता है। एक कावड़ी बनाई है, कावड़ी आप जानते हैं, नल के पानी पीने वालों को कावड़ी का कोई बोध नहीं होता है? नल का पानी पीने वाला कभी कावड़ी का बोध नहीं होता। जब दूर पानी रहता है तब कावड़ी काम में आता है, और सेठ साहूकारों को तो कावड़ी क्या है पता ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं। लेकिन कावड़ी वह है, दोनों तरफ से दो घड़े रहते हैं और भय रहते हैं, और बीच में एक डंडा रहता है, उस डंडे के बीचों बीच में कंधा लगाया जाता है, बैलेंस्ड करने के उपरांत उसके पैर आगे बढ़ने लग जाते हैं और वह पानी लेकर के आ जाता है। जहां तक स्मरण है मुझे, कर्मकांड ग्रंथ में इस जीव को ये कावड़ी लेकर के संसारी प्राणी आ रहा है आज तक, और इसके माध्यम से ही आगे की यात्रा भी यह तय करना चाहता है। भार है वो, तो वह भार होते हुए भी चूंकि पानी है इसलिए वह भारमय नहीं है। प्राण बचाने के लिए वह जल व पानी आवश्यक होता है, और उसने एक तरफ मां को और एक तरफ पिता को रख दिया है, जिनके आंखें चली गई हैं वृद्धावस्था के कारण या और किसी कारण चली गई हैं, लेकिन उनका एक भाव था कि किसी भी प्रकार से अंत अवस्था में हमारे लिए यात्रा हो जाए। ये देखो बहुत सोचने की बात है, आंखें नहीं और यात्रा क्या मतलब होता है, आंखें नहीं और यात्रा क्या मतलब होता, और जिनके पास आंखें नहीं उनको यात्रा करा करके वो क्या श्रेय पाएगा? गलत बात है। यात्रा करना, जिस क्षेत्र में हम चले जाएंगे अपने आप ही भीतरी जो साधना के माध्यम से वहां पर संस्कार पड़े हैं, वहां पर जाने के उपरांत हमारी भावों में उज्ज्वलता हो जाएगी। भावों की उज्ज्वलता के लिए यात्रा की जाती है, आंखों से यात्रा नहीं की जाती है। एक औपचारिकता है, जिन आंखों के द्वारा विषय और कषायों के चित्रों को हम देखते हैं, जो उन्हीं आंखों के द्वारा यह वीतरागता नहीं दिखते, किंतु वीतरागता का स्पर्शन, वीतरागता का सद्धान जो होता है वह भीतरी आंखों के द्वारा, और भीतरी आंख कभी भी फूटती नहीं है। ध्यान रखो, जिसके संस्कार पड़े हैं भीतरी आंखों के द्वारा भी जिस किसी भी क्षेत्र में जाकर के वह अपने जीवन को और पवित्र बना देता है। बेटा कि हमारी वृद्धावस्था है और अब हमें यहां से रवाना होना है, इसलिए एक बार यात्रा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं होगी, अवश्य यात्रा। मेरे जीवन की यात्रा आप लोगों के माध्यम से प्रारंभ हो गई है, बहुत अच्छे। इतना बड़ा उपकार आपका हमारे ऊपर है, मैं इतना कर दूं इसमें क्या प्रार्थना करने की क्या बात है? आप इतने विनय अनुनय के साथ क्यों कह रहे हैं? ये तो आपका अधिकार है। माता पिता कहते हैं, बेटा किसी के ऊपर अधिकार चलाना मानव का कर्तव्य नहीं होता, पालन करना तो ठीक है यह कर्तव्य होता है, लेकिन अधिकार कराना यह ठीक नहीं होता। महावीर भगवान का शासन। महावीर भगवान नहीं कहते हैं ये मेरा शासन। मुझे याद है कि महावीर भगवान के शासन महावीर भगवान ने नहीं दिया, किंतु महावीर भगवान का तो आत्मानुशासन था। किंतु यह संसारी प्राणी उस रहस्य को नहीं समझ पा रहा, अभी भी नहीं समझ पा रहा। यह दूसरे को शासित करना चाहता। जो व्यक्ति दूसरे को शासित करना चाहता वह दूसरे को वह शोषित करना चाहता, और उसके माध्यम से वह कर्तृत्व भाव के कारण अनेक प्रकार के संसार के भव भवों में वह भटकता चला जाएगा। यह शासन ऐसा शासन है जो आत्मानुशासन है। बेटा ऐसा न कहे, यह हमारा अधिकार नहीं, किंतु कर्तव्य भी है तो कर ले। देखो कर्तव्य यदि है तो कर ले, तो अंत में भी जाते जाते भी उनके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं अधिकार नहीं। यदि कुछ कर्तव्य करता है तो हमें इसलिए संतुष्टि होगी कि कर्तव्य के करने से तेरे भीतर एक और संस्कार की परत पड़ जाएगी, जो परत के कारण बहुत गहराई में पानी यदि हो तो भी फूट करके वो ऊपर आ जाए। ऐसे दृष्टि डालने से ही पाषाण में फूट करके पानी आ जाता है। शस्त्र यदि छतरी डाल देता है तो वहीं पर जो है झरने फूट जाते हैं, लेकिन वह शस्त्र की कमान नहीं है। ध्यान रखो वह एकमात्र क्षत्रियता का प्रभाव माना जाता है, उस संस्कार का प्रभाव माना जाता है। सभी लोग प्यासे हैं, पानी मिल जाए क्यों नहीं मिले, इस प्रकार कहते वह ऊपर आना पड़ता है। निम्न गा होकर के भी पानी ऊर्ध्वगा बन जाता है, यह एकमात्र उस संस्कार का परिणाम है। और यदि संस्कार बुरे हैं तो पानी फूट रहा वह भी नीचे और चला जाता है। आज धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ नहीं रहा, पानी उतरता चला जा रहा, आपको पाताल की ओर जाने के लिए संकेत दे रहा है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव करना चाहिए था, लेकिन पानी के पीछे आप लोगों को 500-500, 600-600 फीट नीचे जाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका अर्थ है पानी ऊपर आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। प्राणों के बचाने के लिए ये तो ठीक है, लेकिन प्राणों के बचाने के स्थान पर वह प्राणों को खाने के लिए यदि होता है तो वह पानी भी नीचे की ओर जाएगा और जा रहा है, और यदि आप कोशिश करेंगे तो ऊपर आने के लिए वह मंजूरी नहीं देगा। तो वह अधिकार की बात नहीं, कर्तव्य की बात है। बेटा करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और वह तैयार हो जाता है। माता पिताओं को एक कावड़ी में बैठा करके एक तरफ माँ एक तरफ पिताजी और बीच में कंधा लगा करके जो कोई भी संस्कार डाले हैं उन संस्कारों के गीत गाता हुआ वह आगे बढ़ रहा आगे बढ़ रहा आगे बढ़ता जा रहा। खुशी की पार नहीं है, बहुत दिनों दिन उसको इतनी खुशी हो रही है कि हाँ आज कुछ कर्तव्य के कदम जीवन में उठ रहे हैं, और जिन्होंने मेरे लिए दिशा बोध दिया उनके लिए कुछ किया जा रहा, और वह कर्तव्य का एकमात्र पालन अहम भाव नहीं, और वह जा रहा जा रहा जा रहा। अब कुछ ही समय बचा है वो पार होने वाले हैं, और एक स्थान पर वह कावड़ी उतार देता है और वहां पर जलपान आदि करा देता है। जो कुछ भी भोजन बनाया तो भोजन वगैरह भी कर लेते हैं और करते हैं। फिर इसके उपरांत सुन रहे हो क्या नहीं? हाँ, मैं इसलिए पूछता हूं कि पहले शास्त्र स्वाध्याय कराते समय ऐसा ही पूछा जाता था। हूं कहते जाओ ताकि हम सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था ना इस कान से सुन करके इस कान से छोड़ देंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, भीतर उतर रहा है क्या नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। उतर रहा है? अच्छा, नाड़ तो हिलाओ कम से कम। अच्छा, उतरना चाहिए। जो भीतर उतरेगा वही इस संसार रूपी समुद्र से पे रहेगा। ध्यान रखना, भीतर उतारो, जितने भीतर उतरेगा उतना ही एक काम आएगा। यदि ग्रास यहीं तक रह जाएगा तो वह ग्रास आपको ही खा जाएगा, ये ध्यान रखो। ग्रास नीचे उतरता है तभी वह पच जाता है, ग्रास यदि ठसके के कारण ब्रह्म रंध्र की ओर चला जाता है तो आप ब्रह्मा तो नहीं बन पाओगे लेकिन भ्रम में अवश्य पड़ जाओगे। हाँ, इसलिए पचाने की बात करो, वाचन की बात नहीं। एक एक दाना पच जा, फिर पचना के उपरांत खून अपने आप ही बोलने लग जाएगा। उस खून में, उस खून को हम प्राण बोलते हैं, काय बल बोलते हैं, मन उससे विशेष रूप से संतुष्ट होकर के, अथवा यूं कहना चाहिए मन उसी का संतुष्ट रहता है जो काय बल को अच्छे ढंग से रखता है। तो वह आगे बढ़ने की बात तो नहीं हुई, वहीं कभी ऐसे ऐसे गालियों को वह सुनाना प्रारंभ कर देता है। जीवन हो गया सेवा करते हुए, अंधे बने हुए हैं, सारा टूटने को हो गया, घिस गया है, फूले होने को हो गए, और हमारे जो है थकावट तो मिटती नहीं, सुबह उठते ही कावड़ी लेकर के चलो, शाम तक ले चलो, भूख लगती रहती है, धूप लगती रहती है, अनेक प्रकार के कंकर पत्थर आ जाते हैं, रास्ता तय करना होता है, ये कहाँ का कौन से जन्म का देना पड़ रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे भी अच्छा ये होता तो तुम मर जाते तो बहुत अच्छे। अब ये सारे सारे बातें किसको सुना रहा है? जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने दिशा बोध दिया, जिन्होंने संस्कार डाले, जिन्होंने छोटे से बड़ा कर दिया, जिन्होंने सर्वस्व निछर किया, उनकी प्रति ये सारे के सारे बातें सुनाई जा रही है। लेकिन माता पिता आंखों से भले ही अंधे थे लेकिन कानों से अंधे नहीं थे। उन्होंने सोचा ये शब्द कितने अच्छे हैं, ये इसलिए अच्छे हैं कि हमारी परीक्षा की घड़ी है, संभव है हमने भी इसी प्रकार पूर्व जीवन में किसी के किया होगा और कर्तव्य में कमी रही होगी, इसलिए यह अवश्य मिलता है। जो बोता है वही काटता है, जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कर्म कट रहे हैं और इसके माध्यम से, लेकिन यह ठीक हो जाएगा। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं और मन में खेद खिन्नता नहीं और चेहरों के ऊपर कोई भी मलिनता नहीं और ललाट पर किसी प्रकार की झुर्रियां नहीं। अनुकूलता के साथ तो आपका ललाट और फैल जाता लावरट के समान, और जो ही वह प्रतिकूलता आ जाती है तो 363 झुर्रियां उसके ऊपर आ जाती हैं। 363 क्यों कहता हूं मैं? इसलिए कहता हूं 363 मत ही होते हैं ना, 363 मत होते हैं, वो झुर्रियां उनके प्रतीक हैं। प्रतिकूलता के कारण ये संसारी प्राणी अपनी ललाट को संकुचित कर लेता है और उसमें अपनी आप भीतर की भावना बाहर आकर के देखने लग जाती है। कुछ न कुछ तो तन जाता है, वो क्यों तन जाता है यही तो हमें समझना है। वह तना नहीं, माता पिता शांत बैठे रहे, बच्चे ने सुनाया, जब बच्चे ने देखा इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा और पड़ेगा भी कैसे, क्योंकि कुछ कहेंगे मुख से तो मैं यहीं पर पटक करके चले जाऊंगा तो इनका क्या होगा, इसलिए स्वार्थी है कुछ नहीं कह रहे हैं ऐसा और कह देता है। संभव है आज तक सोचता था कि कान ही आंख ही चली गई है, अब संभव है कि कान भी इनके चले गए, तो बहरे तो हैं, तो क्या बोलेंगे हम? सुनाते सुनाते थक जाए, सारी सारी गालियां देना प्रारंभ। तो फिर जब वह थक गया लड़का, कौन है वो लड़के का नाम मालूम है आप लोगों को? क्या है? हाँ, आप श्रवण है क्या, श्रवण कर रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, इसलिए श्रवण कुमार था। श्रवण वह सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। जब वह थक करके रह गया, उस समय पिताजी ने कहा, बेटा यहां तक ले आया, पूरा काम हो गया, अब बहुत अच्छी बात है, इतना कर लो कि हमें अब जाना नहीं, किंतु इस नदी के उस पार तक ले चल, बस बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा और तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। हमने यहां तक कर दिया, बहुत बड़ा उपकार है ये, ऐसा कहा। इतना किया तो कम से कम नदी पार कर ले। बस नदी पार कराने के लिए वह जैसे ही मूड मानसिकता बना लेता है और पुनः पूर्व की भांति कावड़ी को अपने कंधे पर ले लेता है और वह नदी के पार ला करके रख देता है और बस रख अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया और फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर दिया। आप लोगों को यह कथा तो मालूम होगी हैं? इतनी गौर से कैसे आप सुन रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सुनी है आपने, सुनी है इसलिए वो बहुत अच्छी लग रही है। अब इसमें कमी क्या अपने को देखना है। जब वह रखा कावड़ी और